का हमारा सत्र विशेष है जिसका टॉपिक है सक्सेस स्टोरीज ऑफ ब्रह्मा कुमारी। अभी हम सक्सेस के विषय पर ही दो दिन से वार्तालाप सुन रहे हैं, कई विचार सुन रहे हैं, लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन में आप पधारे हैं, जिस संस्था को आपको निमंत्रण मिला है, जिस संस्था के कैंपस में आप चार दिन आध्यात्मिकता को पाएंगे, वो संस्था क्या चीज है, वो संस्था कैसे और कहां से पहुंची है, उसकी सक्सेस स्टोरी क्या है, कैसे कैसे माइलस्टोन इस संस्था ने पार किए है, कैसे एक छोटे से बीच में आज विराट वृक्ष बन गया है, ये सारी कहानी सारी बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सक्सेस स्टोरीज ऑफ ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन, आदरणीय चंद्रिका दीदी, तीन चार दिन में हमारे सामने जितनी भी बार मंच पर आवे, इतनी भी बार उनका परिचय देवे तो कम रहता है, क्योंकि आप ऐसे प्रतिभा संपन्न विशेष आत्माएं, परमात्मा के अनेक वरदानों से आप फलीभूत हैं। जैसे संस्था की हिस्ट्री भी एक वंडरफुल है, ऐसे आपकी भी जीवन कहानी भी एक वंडरफुल है। समय नहीं है, लेकिन हम सभी बहुत खुशनसीब हैं कि सारे भारत में युवा प्रभाग को नहीं चलाने लेकिन दौड़ाने और उड़ाने के लिए आप निमित्त हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लेकिन लाखों युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। अनेक विशेषताओं से, अनेक वैल्यूज से, अनेक वर्च्यूज से आप संपन्न हैं और अपने नेतृत्व शक्ति से और अनेक गुणों से आप युवा प्रभाग को बहुत ही आगे भी ले जा रहे हैं। तो हम सभी बहुत खुश नसीब हैं, ऐसी प्रतिभा संपन्न आत्मा इस यूथ विंग को मिले हैं। हम भी खुश नसीब हैं आपके पास, हम अहमदाबाद में रहकर आपके सानिध्य में युवा प्रभाग की सेवा करने का भी हमें मौका मिलता है। तो आदरणीय चंद्रिका बहन को मैं विनती करूंगा कि अभी हमें संस्था के इतिहास के बारे में अवगत कराएंगे। आदरणीय दीदी जी, धन्यवाद। ओम शांति।
शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुछ लोग होते हैं ना, उनको पहला बैठना ही पसंद आता है, और कुछ लोग होते हैं ना, उनको लॉर्ड ऑफ द लास्ट बेंच बैठना अच्छा लगता है। हा? ऐसे हैं। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, हमारे पीछे वाले भाई बहन नजदीक आ जाओ। बहुत सारी जगह पड़ी है, नजदीक आ जाओ। वैसे तो मेरा पूरा जीवन ही मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य महसूस होता है, लेकिन फिर भी आज का दिन और खास ये सत्र, जब मुझे ब्रह्मा कुमारी की सक्सेस स्टोरी के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है, तो मैं जीवन का एक परम सौभाग्य समझती हूं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो किसी व्यक्ति का स्थापन किया हुआ नहीं है, उनके अर्थ में ही, उनकी वाक्य शब्द रचना में ही उनका अर्थ समाया हुआ है। प्रजापिता माना सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मादि क्रिएटर कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी, कई लोग पूछते हैं ये ब्रह्मा कुमारी क्यों लिखा है, ये बहनों की संस्था है क्या? हम कहते अरे भैया, कुमार कुमारी में कुमार समाये हुए हैं, कुमार में कुमारी नहीं हो सकता है, लेकिन कुमारी में कुमार अंडरस्टूड है। तो यहाँ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी दोनों ही हैं। ब्रह्मा के पिता परमात्मा शिव हैं, जिन्हें निराकार ज्योति बिंदु कहा जाता है। तो शिव परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापक है, इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए ये विद्यालय है। मुझे इस विश्वविद्यालय की चार बातें बहुत पसंद आई जब मैं पहली बार संस्था में आई। तो पहली बात तो मैंने ये देखा कि यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है, हम सब एक पिता के बच्चे हैं। इवन ब्रह्मा बाबा से मैं मिली तो ब्रह्मा बाबा ने मुझे अपने बाजू में बिठाया, आओ बच्ची, ऐसे बिठाया। तो यहाँ कोई गुरुड़म नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम आमान्या के हिसाब से, मर्यादा के हिसाब से हम सारे नियमों को संभालते हैं, लेकिन प्यार के हिसाब से हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो यहाँ कोई गुरु चेला सिस्टम नहीं है। दूसरा, यहाँ कोई भी ज्ञाति जाति ऊंच नीच गरीब तवंगर छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं। तीसरी बात कि संसार ने जिन बहनों को, माताओं को, महिलाओं को नारी नरक का द्वार है कहा, अथवा तो नारी कमजोर है ये कहा, या नारी कहूं या ना हरी, जहां नारी है वहां हरी नहीं है, ऐसा बोलने में भी हमारे विद्वानों ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा, वहां पर परमात्मा ने नारी शक्ति को, स्त्री शक्ति को उनके दैवी स्वरूप की प्रतीति करा के पूरे विश्व के परिवर्तन का कार्यभार बहनों के सिर पर रखा। इसलिए तीसरा मुझे ये आकर्षण हुआ कि लोगों ने जिसमें से आश ही गंवा दी थी, भगवान ने उसी में अपनी आश प्रस्थापित की। और चौथी बात, आप सभी यहाँ आए हैं, आप हमारे ब्रह्मा कुमारी के कोई भी केंद्र पर जाते होंगे, आपसे कहां भी फीस के रूप में चार्ज नहीं लिया जाता होगा, लिया जाता है नहीं ना? ये एक ही ऐसा इंस्टीट्यूशन मैंने देखा कि जहां कोई फंड, कोई फाड़ा, कोई डोनेशन, कोई फीस के रूप में डिमांड किया नहीं जाए, ऐसी ये मैंने पहली संस्था देखी कि जहां कोई अपेक्षा नहीं है। अब इतना डिवाइन इंस्टीट्यूशन और इतना यूनिक तरीके से चलने वाला ये कार्य, इस संस्था की ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है, उसके पीछे कौन सा रहस्य समाया हुआ है? आज विश्व में 9,500 ब्रांचेस हैं, हमारे जैसी 30,000 ब्रह्मा कुमारी बहने हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, मोर देन 5,000 डेडिकेटेड ब्रदर्स हैं, और घर गृहस्थ में रहकर के इस कार्य में लगने वाले करीब मोर देन 10 लैक्स भाई बहने हैं जिनका जीवन संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत युक्त है, निर्व्यसनी है। घर गृहस्थ में रहते हुए एक योगी जीवन, पवित्र जीवन है। तो ये कोई सामान्य सिद्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी सफलता है इस कलयुग के अंदर, जहां पर चारों तरफ चैलेंजेस हैं, कितने वाइसेस हैं, कितने व्यसन हैं। तो ये सफलता का श्रेय सबसे पहले जाता है परमात्मा को। 1937 में भगवान को इस दुनिया पर काम करने के लिए आना था। भगवान काम करे कैसे, क्योंकि भगवान को अपना शरीर तो होता नहीं है। भगवान हमारी तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। भगवान शरीर लेने छोड़ने की प्रक्रिया में नहीं आते हैं। आपको कल को राजयोगा के लेसन में परमात्मा का परिचय मिलेगा। परमात्मा तो निराकार है, ज्योति बिंदु है। उस पिता को हमारे तक पहुंचने के लिए कोई साकार माध्यम चाहिए जिनके द्वारा वो हमारे से बातचीत करे। लेकिन वो साकार माध्यम को भी कैसे फाइंड आउट करे? तो परमात्मा की एक दिव्य शक्ति है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है, या ध्यान अवस्था कहा जाता है, या दिव्य साक्षात्कार कहा जाता है। 1936 में ये ब्रह्मा पिता जिनको हम कहते हैं, वो एक जवेहरी थे, घर गृहस्थ में रहते थे और अपना लौकिक जीवन व्यतीत करते थे। उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ और उस दिव्य साक्षात्कार में उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य देखा विष्णु चतुर्भुज को और आवाज आया, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, मैं जो हूं वो तू है। फिर दूसरा दृश्य दिखाई दिया, आसमान से कुछ तारे उतर रहे हैं, कोई महाराजा बनता, कोई महारानी बनती, कोई राजकुमार बनता, कोई राजकुमारी बनती, कोई गोप गोपियां बनती, और पूरा स्वर्ग का दृश्य आंखों के समक्ष हो गया। देख करके बड़ा खुश हो गए, ध्यान अवस्था में ही ये दादा लेखराज जी सब देख रहे हैं। तीसरा दृश्य क्या देखा, एटॉमिक वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज, सिविल वॉर, लोग एक दो को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खून की नदियां बह रही हैं, और वो दृश्य इतना दर्दनाक जो ध्यान अवस्था में ही इनके मुख से निकल गया, बस करो प्रभु, बस करो, बस करो, अब मैं नहीं देख सकता हूं, बस करो। और उसके बाद एक चौथा दृश्य जो देखा, उसमें एक बिंदु को देखा, ज्योति को देखा, आवाज आया, बच्चे तुम्हें माताओं कन्याओं के द्वारा दुनिया को स्वर्ग बनाना है। बच्चे तुम्हें माताओं कन्याओं के द्वारा दुनिया को स्वर्ग बनाना है। अब ये दिव्य साक्षात्कार को देखने के बाद वो दृश्य इनों से भूले नहीं जा रहे थे, तो उनको हुआ मैं गुरु से पूछूं मुझे ये क्या हुआ। दादा लेखराज जी ने अपने जीवन काल में 13 गुरु किए थे। उनका जीवन मंत्र एक था कि एक सत्य से अगर कोई दूसरा सत्य मिलता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाए। तो वो अपने गुरु के पास गए, गुरु जी को बड़े विनम्र भाव से सारी बात सुनाई और सुनाने के बाद कहा कि ये मैंने क्या देखा। तो गुरु ने जवाब दिया, लखीराज बाबू लगता है तुम पागल हो गए हो। क्या कहा? तुम पागल हो गए। वो चले गए। उनको ख्याल आया कि ये गुरु की शक्ति नहीं है, ये किसी और शक्ति ने मुझे ये सब प्राप्त कराया है। मन का ये समाधान लेकर के फिर भी उन्होंने एक दूसरे गुरु को स्वीकार किया। उस गुरु को करने के बाद एक बार ऐसा हुआ, अपने घर में सत्संग था। अब लेखराज बाबूजी का ये असूल था कि गुरु गादी पीठ पर बैठे, व्यासपीठ पर बैठे, तब सामने बैठ जाना, जब तक गुरु उठे नहीं तब तक उठना नहीं, ये उनका असूल था, नियम था। ये जो लास्ट गुरु किया, 13वें नंबर का गुरु था, उन गुरु को घर में बुलाया हुआ था सत्संग के लिए। सत्संग चल रहा था और अनायास बीच में से दादाजी उठ करके अपने कमरे की ओर प्रस्थान किया। तो जब वो अपने कमरे की ओर गए तो उनकी पत्नी और पुत्र वधू को प्रश्न हुआ कि दादाजी बीच से क्यों उठे हैं? अवश्य कुछ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम होगा। वो भी उनके पीछे उठ करके कमरे में गए। तो दादा अपने कमरे में आंखें बंद करके बैठे हुए थे, ये लोग भी सामने शांति से बैठ गए। कुछ समय के बाद इनकी आंखें खुली, तब उस आंख में से बहुत ही दिव्य प्रकाश, बहुत ही शीतलता और प्यार, और कुछ समय के बाद पूरा कमरा लाल प्रकाश से भर गया। ये दोनों ही इस दृश्य को देख रहे थे। दादा भी एक अलग तरीके से जैसे सब कुछ देख रहे थे, उस शरीर को भी देख रहे थे जैसे कोई आश्चर्य की भूमिका से देख रहे थे। और कुछ ही समय में वो पूरा प्रकाश दादाजी के तन में समा गया और मुख से आवाज निकला, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिव, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिव। और फिर आंखें बंद हो गई। काफी समय के बाद जब आंखें खोली तो दादाजी बड़े आश्चर्य में थे, देख रहे थे। अपनी पत्नी पुत्रवधू से पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है, वो कौन था, मुझे ये सब क्या कह करके गया, मैं कहां हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये समय वो था जब निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा ने उस सामान्य मनुष्य तन को इस संसार के कल्याण अर्थ स्वयं ने स्वीकार कर लिया था, उस शरीर का होल्ड ले लिया और उनके द्वारा इस पूरे विश्व परिवर्तन के कार्य का ये महाप्रयाण चलना था। ये बात परमात्मा को मालूम था, ये बात दादा लेखराज को मालूम नहीं थी। अब ये सब होने के बाद दादा लेखराज जी परिवार से छुट्टी लेकर के एक मास कश्मीर चले गए और वहां एकांत में अकेले रहने लगे। अब जो वहां रहते थे तो वहां से परिवार में जब पत्र लिखते थे तो ऐसा पत्र लिखते थे, उनकी पत्नी का नाम जशोदा था, उतना बेटे का नाम नारायण था, एक बेटी का नाम पुट्टू था। वो पत्र लिखते थे, जशोदा तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, नारायण तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूँ, हम सब ऊपर से आए हैं, हमें वापस घर जाना है। अब ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसे ऐसे पत्र लिखते थे। इन पत्रों को पढ़ते हुए परिवार वालों को चिंता हो गई कि पता नहीं बाबा को क्या हो गया है। तो उनके चाचा कश्मीर आकर के दादाजी को समझा करके घर ले गए, वापस घर गए तो क्या किया, सबसे पहले पत्नी बच्चे पुत्र बधु बेटियां दामाद सारे परिवार को बुलाया और बिठाया। बुलाकर बिठा करके अपने जीवन के अनुभव बच्चों के साथ शेयर किए कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे भगवान क्या कह रहा है, मुझे क्या करने का दिल में हो रहा है, मुझे कोई शक्ति कुछ कह रही है। तो मुझे विचार आता है कि हम अगर आप सब मुझे सहयोग करो, ऐसा दादा अपने परिवार को बोलते हैं, आप सब मुझे सहयोग करो तो हम अपनी स्थावर जंगम सारी मिलकर पांच माताओं के नाम बिल कर दे, उन माताओं को हम समर्पित हो जाए और माताओं बहनों के द्वारा इस देश का और दुनिया का भला करें। बहुत ध्यान से सुनिए आप, सुन ही रहे हो, फिर भी कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। निराकार परमात्मा जिसको अपना शरीर नहीं है, निराकार भगवान जिसको अपना मकान नहीं है, मिलकत नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको इस दुनिया पर आकर के सामान्य मनुष्य के द्वारा काम करवाना है। परमात्मा की वो दिव्य शक्ति में कितनी ताकत है ये आप ध्यान से सुनना है। दादा लिखराज जी, उनका व्यक्तित्व कुछ इतना सुंदर था बचपन से लौकिक जीवन में, राजा महाराजा ये प्रभावित हो जाते थे, कहते थे लखीराज जी भगवान ने भूल कर दिया है, आपको कोई राजकुल में जन्म देना था, क्योंकि हीरे जवाहरात का धंधा था, राजा रजवाड़ाओं के वहां जो बेटियां होती थी वो तो पहले पर्दे नशीन रहती थी, बहुत मर्यादा में रहती थी, पर बाबा को वो कहते थे कि ये तो आपकी बेटियां हैं, आप उन बच्चों बेटियों को जैसा गहना बनाना है ना, आप उनको बनाने के लिए आप नक्की करके बनवा के दो। तो बड़ा भव्य व्यक्तित्व था। अब यहां पर लौकिक परिवार में भी उन्होंने अपने बच्चों को बेटियों को सबको इतना अच्छी तरीके से पाला था, जो परिवार में कोई की ताकत नहीं होती थी कि बाबा कहे ये करो तो मना करे, वो किसकी ताकत नहीं थी, इतना दिल जीत लिया था अपने दिव्य व्यवहार से लौकिक जीवन में भी। तो बोला हाँ दादा आप जैसे कहेंगे हम सब आपके साथ हैं। तो परिवार वाले तैयार हो गए। फिर उसने उन्होंने अपने पार्टनर को बुलाया, पार्टनर को बुला करके कहा कि देखो पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या काम रहा, अब मुझे धंधा नहीं करना है, मेरे हिस्से में जो आता है वो मुझे दे देना। तो उसके पार्टनर को लगा कि शायद मेरे से कोई गलती हुई है या दादाजी नाराज हुए हैं, तो वो मनाने लगे कि दादाजी कुछ भी हो हमें बताइए, पर आप हमारे से ऐसे अलग मत हो जाइए। बोला मैं अलग नहीं हो रहा हूँ, अब मुझे धंधा ही नहीं करना है, मुझे भगवान मिल गया है, अब मुझे ये तुम्हारे हीरे जवाहरात पत्थर नजर आते हैं, इसलिए मेरे हिस्से में जितना आता है आधा मुझे दे दो। पार्टनर से इस प्रकार से अलग हो गई। 1936 से 1937 एक साल तक ये पूरे कार्य कारोबार को करते हुए, बिजनेस को संकेलते हुए और सारा ट्रस्ट वगैरह माताओं के नाम बना करके 1937 दिवाली के दिन पर बाबा ने 5 माताओं को अपना समग्र समर्पित किया, जिसमें परिवार की एक भी व्यक्ति नहीं थी। और उसी दिन से आप माताओं बहनों कन्याओं को कहा कि मैं आपका सेवक हूं, माताओं को ट्रस्टी बनाया, माताओं को सारा कुछ दे दिया और स्वयं माताओं का सेवक बना। अब ये दादा तो गृहस्थ ही था, वो कोई साधु संत महात्मा नहीं था, उन्हें कोई कथा सत्संग करना नहीं आता था, तो वो गीता लेकर के पढ़ते थे। माताएं बहनें कहने लगी कि बाबा आप हमको सत्संग कराओ, आप हमको अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, तो वो गीता लेकर के पढ़ते थे। अब जब गीता पढ़ते थे, और आपको मालूम है ना अपने यहाँ खुली आंखों से योग करते हैं। ये शुरू कहां से हुआ? यहां से हुआ। बाबा समझो ये पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते समझो इनके पर नजर गई, ध्यान में चला गया, इनके पर नजर गई, ध्यान में चला गया। वो पढ़ रहे हैं, हाथ में पुस्तक है, उनको देखते देखते लोग ध्यान में जा रहे हैं। ध्यान में कोई कृष्ण को देखते, कोई राधे को देखते, माताएं बहनें भाई परिवार के परिवार लोग आने लगे, छोटे छोटे बच्चे, और वो बाबा गीता सुना रहे हैं और वो उठ करके डांस करने लगे हैं। उठ करके कोई यहाँ डांस करता, कोई यहाँ करता, कोई यहाँ करता। ऐसे करते करते एक बारी बाबा के हाथ से पुस्तक गिर गई, मैं ना चली गई, उन्होंने छुड़ा दिया और अपने आप मुख से बोलना शुरू हो गया, बिना पुस्तक बोलना शुरू हो गया। और तब बाबा ने बच्चों को ज्ञान दिया कि बच्चे मैं आया हुआ, सीधी ये बात शुरू, मैं आया हुआ, मैं इस सामान्य रथ के द्वारा नई दुनिया स्थापन कराने आया हूं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो करके, ये कलयुग खत्म हो करके अब सतयुग की स्थापना होने वाली है। ऐसे ऐसे रहस्यों को शिव बाबा, निराकार बाबा, ज्योतिबिंदु बाबा, ब्रह्मा बाबा के माध्यम के द्वारा बताते गए। अब शुरू में तो क्या हुआ, जब ये दिव्य साक्षात्कार होने लगे तो झुंड के झुंड आने लगे, चलो भगवान मिलेगा, चलो जल्दी चलो भगवान मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, नारायण मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, चलो। लोग आने लगे, दो दो हजार, तीन तीन हजार की संख्या में। और बाबा उस समय का धनी मानी व्यक्ति था, बाबा के चार बहुत बड़े बड़े बंगलो थे, उस समय कराची में थे, बड़े बड़े बंगलो थे सिंध कराची में, पांच छह गाड़ियां थी, काफी जमीन आदि थी। अब लोग आते गए, लेकिन ये तो नई दुनिया का स्वर्ग की स्थापना का कार्य होना था, तो फिर धीरे धीरे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, सबसे पहले शिव बाबा ने इनको ब्रह्मा नाम का नामकरण विधि किया। शिव बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अब ये ब्रह्मा है, इनके द्वारा मैं नई दुनिया स्थापन करने वाला हूं। तो शिव पिता ने उनको ब्रह्मा के नाम से स्थापन किया और फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सारी स्थापना का नक्शा शिव बाबा समझाते गए कि कैसे कैसे ये सारी दुनिया बदलने वाली है, और उसके चार बेसिक रूल सुनाए। किसी भी मकान का फाउंडेशन होता है, इमारत की फाउंडेशन होती है, जिस फाउंडेशन के पर इमारत बनती है, इस संस्था के मुख्य चार फाउंडेशन नियम हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य व्रत, दूसरा पांचों विकारों का दान, ब्रह्मचर्य व्रत के साथ क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य आदि आदि, संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत, निर्विकारी जीवन। फिर दूसरा निर्व्यसनी जीवन, कांदा नहीं, अरे मीट मटर, कांदा प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट तमाकू आदि कुछ भी व्यसन नहीं, जिसको व्यसन बोलते हैं। तीसरा, शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन माना पवित्र हाथों से बना हुआ, बिना प्याज लहसुन मीट मटर, परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन। और चौथा, नित्य प्रति राजयोग का अभ्यास एवं ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण। ये चार उसके मुख्य नियम हैं। तो जो भी सत्संग को सुनना चाहते हैं, एक दिन बाबा ने मुरली चलाई और कहा कि जो भी सत्संग को सुनना चाहते हैं, उन्हों को अपने पेरेंट्स से या अपने संबंधियों से या अपने जो भी रिस्पॉन्सिबल है उससे पत्र लाना होगा कि हम यहां सत्संग में जाते हैं, इस सत्संग के इन नियमों को पालन करने हैं और इन नियमों पर चलने के लिए मैं मेरी बच्ची को या बहू को या बेटे को या पुत्र वधु को परमिशन देती हूं। जो ऐसा पत्र लाएंगे वो ही ये सत्संग में आ सकेंगे। हजारों आते थे, अब ये नियम में जो चले और ये नियम में चलने के लिए अपने परिवार की छुट्टी मिले वो ही सत्संग में आ सकते हैं, तो क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं ने? क्या हुआ होगा, 2-3 हजार में से कितने बचे होंगे, कितने बचे होंगे? एक रिवोल्यूशन हो गया, एक जबरदस्त क्रांति हो गई, घर घर के अंदर आवाज फैल गया कि ये दादा लखीराज जादू करता है, और उनको 16,108 पटराणियां चाहिए और उसमें से कुछ तो मिल गई हैं, क्योंकि जब ये नियम सुनाए गए और ये नियम जब घर घर में लोग सुनाने लगे कि हमको पत्र लिख करके दो, हमें सत्संग में जाना है, जिनको सचमुच आना था तो उनको पत्र चाहिए, तो झगड़े होने लगे। कौन हस्बैंड अपनी पत्नी को पत्र लिख करके देगा कि हाँ तू जा ब्रह्मा कुमारी में और तुम पवित्र रहना? देंगे भाई? नहीं देंगे, नहीं तो क्या होगा, झगड़ा ही होगा ना। मालूम नहीं था उन को। करीब 350-450 के आसपास की संख्या आकर के इकट्ठी हुई, बाकी सब झड़ते गए। और फिर वहां पर उन्होंने ये आश्रम कहो, यज्ञ कहो, विद्यालय कहो, एक नई दुनिया की व्यवस्था के लिए एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर बना। और 1937 से लेकर के 1951 तक ये प्रवृत्ति सिंध हैदराबाद, जो पाकिस्तान में एरिया है अभी, वहां पर ये 14 साल तक एक्टिविटी चली। बाद में 51 के बाद सभी यहां माउंट आबू में मूव हुए, यहां आए, और यहां पर आकर के पहले किराए के मकान में रहे, फिर धीरे धीरे अभी अपना पांडव भवन है, जो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो 1 तारीख को वो साइट सीन का दिन है, उस समय आप देखेंगे। जिन्होंने पांडव भवन नहीं देखा वो हाथ उठाएं। हाँ, काफी ने नहीं देखा है। जो अपना असल जहां शुरू हुआ तो वहां से अपनी एक्टिविटी शुरू हुई। तो उस प्रकार ब्रह्मा बाबा, अब ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आया तब ब्रह्मा बाबा की शरीर की उम्र 60 साल की थी। परमात्मा अपना कार्य कराने के लिए आपका कुछ भी नहीं लेता है, ध्यान से सुन लेना। भगवान अपना काम कराने के लिए आप जिसको अपना समझते हैं वो चीज भगवान कुछ भी नहीं लेता है, लेकिन जब आप भगवान के लिए संकल्प करते हो तो भगवान आपको एक्स्ट्रा मदद दे देते हैं। ब्रह्मा बाबा की जीवन उस जमाने के लौकिक ज्योतिषियों ने देख के रखा था कि 60 साल की आयुष्य है। ब्रह्मा बाबा की आयुष्य 60 साल की है ऐसा फोरकास्टिंग था। भगवान 60 साल की उम्र में आया और 93 इयर्स तक ब्रह्मा बाबा की जीवन काल रही। ये एक्सटेंशन किसने दिया? भगवान ने लाइफ का एक्सटेंशन दिया। कईयों के जीवन के अनुभव हैं, तन से सेवा करने वाले, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। जब मैं इस संस्था में आई 18 साल की उम्र में, बीमार रहती थी, डरपोक भी थी, गुस्सा भी बहुत था, किसी काम आने वाली नहीं थी, लेकिन भगवान को अपना बनाना था तो मुझे भी दिव्य साक्षात्कार हुआ। भगवान ने मुझे दिव्य साक्षात्कार से ढूंढा है, जबकि अहमदाबाद में कोई केंद्र नहीं था। एक दिन सुबह 3:30 बजे मैंने दूर से देखा, सफेद कपड़ों में बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व, उसमें कोई लाइट प्रवेश की कर रही है। वो धीरे धीरे मेरे पास आए, आकर के मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्ची मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। बच्ची मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हूँ, तुम मुझे ढूंढ लो। और वो देखने के बाद, मैं बहुत ढूंढती थी, मैंने बहुत संतों के प्रवचन सुने, चिन्मयानंद, महर्षि महेश, डोंगरे जी, अपना आनंदमयी माता जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जितने लोग अहमदाबाद में आते थे, न्यूज़पेपर में जितने लोगों की प्रवचन का कॉलम पढ़ती थी, बस हम सुनने चले जाते थे कि कभी वो आ जाएंगे। भगवान को काम कराना था। मरने जैसी हालत से मुझे नई जिंदगी मिली। भगवान हमारा कुछ नहीं लेता है। अगर भगवान के कार्य के लिए हम संकल्प करते हैं, चाहे हम तन से, चाहे हम मन से, चाहे हम धन से, चाहे हम संबंध से, चाहे हम साधन से, चाहे हम स्थान से, चाहे हम अपनी विशेषताओं से, भगवान उसमें अनेक गुना भर देता है। ब्रह्मा पिता ने जब शरीर त्याग किया, वो दृश्य में आंखों से भूल नहीं सकती। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत था, तपस्वी जीवन था, मृत्यु ने अपने वश में किया था, ऐसा ही कहूंगी। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने देह त्याग किया उसके एक मास पहले। मैं बाबा से बहुत बारी मिली हूँ, काफी 9 से 10 बारी मिली होंगी, और हर टाइम जब मैं आती थी 8-10-15 दिन रह लेती थी, और बाबा से मैं बहुत क्लोज थी। मैं वैसे होता है बड़े लोगों से अपॉइंटमेंट लेके मिलना होता है, वैसे बाबा के भी जो ध्यान रखते थे बहन उनसे बात करके जाना होता था, लेकिन मैं किसी अपॉइंटमेंट नहीं लेती थी, मैं तो सीधी बाबा के पास भाग जाती थी। कहती थी भगवान मेरा है, जिसके लिए बहुत भक्ति की, मैं किससे पूछने वाली नहीं हूँ, मैं तो सीधा जाऊंगी। तो मैं बाबा के पास सीधा जाया करती थी, मिलती थी। तो बाबा ने देह त्याग किया उसके एक मास पहले, मैं एक ग्रुप को लेकर के आई थी। जब ग्रुप आता था फिर वापस जाता था, तो लास्ट में बाबा सबसे मिलते थे, और बादाम मिश्री इलायची हाथ में देकर के कहते थे और दृष्टि देते थे और कहते थे बच्चे गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो उस सवारी सभी को जब देते गए, लास्ट में मेरा नंबर आया लेने के लिए, क्योंकि मैं ही ग्रुप लेके गई थी। तो बाबा ने मुझे हाथ में दिया, लेकिन मेरा हाथ 10 मिनट तक बाबा ने पकड़ के रखा, बाबा दृष्टि देते रहे, उनकी आंखों से भी प्यार के मोती झलक रहे थे, मेरी आंखों से भी पता नहीं आंसू आ रहे थे, कुछ बातें हो रही थी समझ में नहीं आ रही थी बाबा क्या कह रहा है। फिर जब मैं रास्ते में जा रही थी, उसी समय मन में एक संकल्प बार बार आने लगा, बच्ची इस बाबा को इस रूप में फिर तुम कभी नहीं मिलोगी, इस बाबा को इस रूप में फिर तुम कभी नहीं मिलोगी। तो मेरे को होता था ऐसा व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी वो आता ही रहा। मैं अहमदाबाद चली गई, वो विचार मेरे मन में कायम रहा। 18 जनवरी को शाम के टाइम 6:30 बजे मैं तैयार होकर के बैठ गई। उसी दिन मेरे मन में बहुत विचार आ रहा था कि आज मुझे रात को साधना करके ये शरीर को छोड़ देना है, पता नहीं ब्रह्मा बाबा तो कभी भी चला जाएगा, वो चला जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी, उससे अच्छा है मैं पहले चले जाऊं। तो मैं 6:30 बजे के करीब साधना में बैठ गई। साथ मुझे उस समय केंद्र पर बुलाया था मदद के लिए, बाकी सभी लोगों का काम पूरा हो गया था, वो आराम से अपने काम पूरा करके सो गए। 8:45 बजे दरवाजे पर आवाज आया, जोर से आवाज आया, कोई ने नहीं खटखटाया, तो मुझे फिर ध्यान से उठना पड़ा, और उठ करके मैंने दरवाजा खोला तो एक भाई ने आकर के कहा बहन ब्रह्मा बाबा चला गया, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। बस मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या सुन रही हूँ, अब शरीर तो मैं आज छोड़ने वाली थी, मैं खड़ी कैसे हो गई। परंतु बाबा ने समाचार सुना कि बाबा ने बस ऐसे बैठे बैठे ऐसे ही 2 मिनट के लिए बाबा का हाथ गया और बाबा ने शरीर छोड़। उस दिन बाबा ने सभी बच्चों को आश्रम वासियों को कहा था, बच्चे बाबा रोज रात्रि क्लास 8:30 बजे कराते थे पहले, 8-8:30। उस दिन बोला आज बाबा बच्चों को जल्दी रात्रि क्लास करा देंगे, बच्चे खाना जल्दी जल्दी खा लेना। तो बाबा ने 7 बजे रात्रि क्लास करा लिया, क्लास करा के 8 बजे के करीब अपने चैम्बर में गए, और 8:15 के आसपास तो बाबा ने देह त्याग कर दिया। सफल जीवन इसको कहा जाता है। जो भगवान के इशारों को समझ सका, जो भगवान के इशारे पर अपने सर्वस्व को ईश्वर के प्रति स्वाहा कर दिया, केवल खुद के लौकिक परिवार को नहीं, केवल भारत देश को नहीं, सारे विश्व के लिए अपने आप को बलिहार किया। बाबा की दिनचर्या इतनी परफेक्ट हुआ करती थी, बाबा सुबह 3 बजे उठ जाते थे, 3:15 बजे साधना में बैठ जाते थे, 6:30 बजे मुरली सुनाने आते थे। बाबा का हर कार्य घड़ी के कांटे पर चलता था। और बाबा मुरली में हमें कहते, बच्चे तुम्हें लीवर घड़ी बनना चाहिए। बाबा बच्चों को पत्र लिखने का टाइम बाबा का फिक्स होता था, पांडव भवन झोपड़ी में जाएंगे। बाबा हर बच्चे से पर्सनल मिलता था। आज हमारी जीवन यूं ही नहीं बनी है। जब पहली बारी मैं आई थी, बाबा मुझे पर्सनल झोपड़ी में मिले, मुझे पहला सवाल बाबा ने ये कहा, बच्ची ज्ञान के हिसाब से तुम्हें लगता है कि तुमने इस जीवन में जितने पाप किए हैं वो बाप को सुनाओ। ये बहुत बड़ी परीक्षा थी ना कि नहीं? उस समय मेरी 18 साल की उम्र थी। ज्ञान के हिसाब से तुम्हें समझ में आता हो कि तुमने जो पाप किए हैं आज तक वो बाप को सुनाओ। मुझे याद है मैंने पूरा 1 घंटा अपनी जीवन कहानी भगवान को सुनाई थी, ब्रह्मा के तन में आए हुए भगवान को सुनाई थी। और वो सुनने के फल स्वरूप मुझे बाबा ने एक महावाक्य कहा। मैंने सब सुनाया, मुझे गुस्सा आता है, मैं छोटी बहन से कैसा व्यवहार करती, माँ से कैसा, जितनी मेरे जीवन में कमियां थी वो सारी मैंने खोल के सुनाई। वो सुनने के बाद कहा, बच्ची तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ों बड़ों का कल्याण होना है। तब समझ में नहीं आया था, अब समझ में आता है कि बड़े लोगों को सच्चाई और निखालसता अच्छी लगती है। और मैंने बाबा को सच्चाई से सब कुछ ही सुना दिया था। बाबा ने मेरे जैसे कितने सारे लोगों को अपने जीवन का टाइम दिया। आज अगर इस जीवन में जो भी कुछ सफलता मैं अनुभव करती हूं तो स्वयं परमात्मा और परम प्यारे हमारे ब्रह्मा बाबा और उनके बाद हमारी जो यज्ञ में दादियां हुई हैं, मैं सुनाने जाऊं तो ये रात कम हो जाएगी, लेकिन एक एक व्यक्तित्व की शक्ति ने हम सभी को इतना संवारा है, सजाया है, जो आज परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में हम समझते हैं, हमें निमित्त बन करके इस पूरे विश्व को बदलने का कार्य करना है। तो सफल जीवन के लिए फिर भी मैं कहूंगी, दिनचर्या को अच्छी बनाना, समय का अच्छी तरह से मूल्य करना, अपने आप से जिन लोगों से काम करते हैं उनसे, भगवान से सच्चाई से चलना। कहा जाता, सच्चे दिल पर साहब राजी। तीसरा, आत्मविश्वास और दृढ़ता से हर कदम को आगे बढ़ाना। बाकी आप सभी को मैं इतना जरूर कहूंगी कि भगवान ने आपको सिलेक्ट किया, यहाँ तक आप आ गए हैं, आंखें खोल करके, विवेक को जागृत करके, और आप अपने इस विजिट का फायदा इस रूप में लेना कि वापिस जा करके अगर 7 दिन का कोर्स नहीं किया है जरूर करना, केंद्र के संबंध में रहना, अपनी जीवन बनाने के लिए समय को वेट न करना, डिले इज डेंजरस, क्योंकि अब समय बहुत नाजुक आता जा रहा है दुनिया के अंदर, उसके पहले स्वयं को संवार ले। ओम शांति।
ओम शांति। संस्था के इतिहास के साथ साथ आदरणीय चंद्रिका बहन ने अपने जीवन के कुछ निजी अनुभवों को भी आपके साथ शेयर किया। मैं समझता हूँ दोनों चीजें, दोनों बातें आपको अवश्य प्रेरणा मिली होगी, संस्था कहाँ से कहाँ ब्रह्मा बाबा लाए और बहन ने भी अपने कैसे जीवन को संवारा है बाबा की मदद से। तो फिर से बहन जी का एक बार अभिवादन करते हैं।